अब ये सारी जो बात कही है इसको नज़र में रख के आयत 55 को सुनिए तो मेरा ख्याल है कि बात वाज़े होगी, क्योंकि इस आयत में काफ़ी ज़्यादा शुबहात देने और लेने की कोशिश की गई। फरमाया इस क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब फरमाया अल्लाह ने ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं पूरे का पूरा ले लूँगा तुझको, वराफ़ियू का और उठा लूँगा तुझको, इलैया अपनी तरफ। लफ्ज़ों पे फोकस करेंगे तो समझ आएगी आपको ये आयत इंशाअल्लाह ताला। वराफ़ियू का इलैया, और उठा लूँगा तुझे अपनी तरफ, व मुतहिरू का मिनल्लज़ीना कफ़रू, और पाक कर दूँगा तुझे उन लोगों से जिन्होंने कुफ़र किया, मुराद हैं यहूद। व जाइलुल्लज़ीना तबऊ का फ़ौकल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और तेरे पैरोकारों को मैं काफिरों के ऊपर गालिब कर दूंगा क़यामत के दिन तक। फिर सुम्मा इलैय मरजिउकुम फ़ाहकुमु बैनकुम फ़ी मा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, फिर मैं फ़ैसले कर दूंगा तुम्हारे और उनके दरमियान जिसमें तुम इख्तलाफ़ करते थे। ये एक आयत यहाँ और बाकी सूरत आगे आयतें जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तआला सूरत निसा की आयतों में भी ये आयात जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के बारे में बहुत ही क्लियरली बात बताती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत ही ज़रा दूसरे रंग में समझने की और पढ़ने की कोशिश की, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद पुकारा। ये कब हुआ था? ये ऐन उस वक्त हुआ था जब लोग आपको सूली पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इमेजिन कर सकें तो करिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने के लिए लोगों ने हिसार किया हुआ है। अब वो वक्त कितनी मुश्किल का वक्त हो सकता है जब किसी की जान के लाले पड़े हों। गम और दुख के वक्त में अल्लाह ताला कभी ईमान वालों को तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं की तह में हों या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हों। उस वक्त भी कुरान नाजिल होता है और अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया की भी इसी तरह मदद की। तो बिल्कुल ऐसे वक्त में ईसा को अल्लाह ताला पुकारते हैं, या ईसा, ए ईसा। कितनी ढारस मिली होगी ईसा अलैहिस्सलाम को कि ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उनको पुकारा। क्या कहा? इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं आपको पूरे का पूरा लेना चाहता हूँ। लफ्ज़ तवफ़ी जो है ये वाव फा या से है, वफा। उर्दू में कहते हैं ना वादा वफा किया, ये वही लफ्ज़ है। वफ़ियत का लफ्ज़ आप सुनते हैं, पीछे भी पढ़ चुके, जो भी आमाल है उसकी पूरी की पूरी जज़ा, वो भी इसी से। अब इस लफ्ज़ का असल जो माना होता है वो क्या होता है? वसूल करना, पूरे का पूरा ले लेना। इसी से जब उर्दू में ये लफ्ज़ हम बोलते हैं तो इसका मुराद क्या ले लेते हैं कि फौत होना, रूह कब्ज़ करना। इस लफ्ज़ का अगर आप असल मानी लें ना तो पूरे का पूरा लेना है, लेकिन मजाजी मानी, मजाजी क्या होता है? सेकेंडरी मीनिंग्स, सपोज मीनिंग क्या है? फौत करना। इस लफ्ज़ पे इन्नी मुतवफ़ी का पे बहुत सारे लोगों को ये गलती लगी और गलत फहमी हो गई कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। इसीलिए आप देखें कि जब डेट्स लिखी जाती हैं तो कबल मसीह और बाद मसीह, आप लफ्ज़ सुनते होंगे AD आफ्टर D, डेथ क्या है? डेथ। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, मुसलमानों का ये क्रीड नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। असल बात इसमें क्या थी? नंबर एक क्या है कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह जाती है आसमानों पे, जिसम हमारे पास होता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरे का पूरा उठा लिया, जिसम और रूह के साथ उठा लिया। एक मानी इसका ये बना जो बिल्कुल दुरुस्त है कि आम लोगों का जिसम दुनिया पे रह जाता है, रूह चली जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म और रूह दोनों चली गई, ठीक है, एक मानी। एक दूसरा मानी भी इसका किया जाता है जिसमें इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का भी कॉल आता है, वो क्या? वो कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इस आयत में तकदीम और ताखीर की है। कैसे? राफियू का इलैया, तुझे बुलंद करता हूँ अपनी तरफ, यानी अभी तो मैं तुझे उठा रहा हूँ इन लोगों से बचाने के लिए, लेकिन वह मुतवफ़ी का, जब नबी सल्लम के आने के बाद क़यामत के करीब अब वापस आएंगे तो फिर आपको फौत भी कर दूंगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, लफ्ज राफियू का के बाद जब इला आता है ना, तो फिजिकली अपलिफ्टिंग का मानी है ऊपर उठाना, जैसे आप यहां से नीचे से एक किताब उठा के तो वो ऊपर रैक में रख दें। राफियू का इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ उठा रहा हूं, इशारा है इसमें उनके आसमान की तरफ उठाए जाने की तरफ। ठीक है, कुछ ने कहा नहीं यहां तो बुलंदीय दर्जात का मानी है, दर्जे बुलंद किए। हालांकि याद रखिए कि जब राफियू का के बाद इला आ जाए तो ये फिजिकल बुलंदी का मानी होता है, और कुरान पाक में ये लफ्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। पीछे भी हम पढ़ चुके तीसरे पारे की पहली आयत में कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर दर्जों में बुलंद किया। तो बात समझना ना चाहे ना तो इसका मानी क्या है, ये मैं आपको पहले गलत तावीर बताती हूँ जो अक्सर करते हैं, इसको सही ना समझिएगा। आम लोग जिसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, नाम लेने को दिल तो चाह रहा है लेकिन फिर भी नहीं लूंगी, नाम तो हमने सुने होते हैं लेकिन हमें अकायद पता नहीं होते, लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह ये अकीदा रखता है कि मुतवफ़ी का से मुराद ईसा फौत हुए, कश्मीर में बालाकोट के पास उनकी कब्र भी मौजूद है। हम उन्हें कहते हैं कि ये 100 हदीसें क्या दिख रही हैं जिसमें ईसा के दोबारा आने की बात है, तो कहते हैं ये ईसा नहीं आएंगे, मसीले मसीह आएंगे, और वो उनके हिसाब से आ चुके हैं। अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुद पे आएंगे, ये शाम के पास एक मुल्क है, और उसने लुद को लुधियाना बना लिया, और उनके वो जो बुज़ुर्ग थे वो लुधियाना से पैदा हुए, उन्होंने उनको कहा कि ये है मसीले मसीह, और जो उनको ना माने वो कहते हैं ये सारे काफिर हैं। ये काफिरों की जो बात है, अल्लज़ीना कफरू और जाएक अल्लज़ीना तबाऊ का को जो बात है, उन्होंने सारी अपने खिलाफ रखी, और उन्होंने अब उनको मसीले मसीह करके उसी नाम पे एक पूरा ग्रोह बना लिया है। हालांकि आप देखें जो ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने की सारी सिम्टम्स हदीसों में आती हैं, मसलन आप सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, क्रिश्चियनिटी का खात्मा हो जाएगा, दज्जाल आएगा वो मरेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, और वो बुज़ुर्ग खुद भी फौत हो चुके हैं, अब उनकी नस्ल में फिर एक पूरा मसलक चला हुआ है, और लोग चूंकि नामों पे सिर्फ जाते हैं उनको अकायद नहीं पता होते, कितने भोले भाले लोग हैं जो इन बातों में आते हैं। तो बातिल तावील इसकी क्या है, क्या ईसा मैं तुझे अब फौत कर रहा हूँ और तेरे दर्जों को बुलंद कर रहा हूँ और तुझे पाक करता हूँ इन काफिरों से, यानी जो लोग तेरी जान ले रहे हैं, लेकिन ये तावील है। सही तफसीर इसकी क्या है, एम ईसा मैं तुझे बदन और रूह के साथ ले रहा हूँ, यानी पूरी बॉडी समेत तुझे लूंगा, वह राफियू का इलैया और तुझे अपने करीब कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकली अल्लाह सुब्हान तआला सातवें आसमान पे है, तो ईसा को आसमान पे ले दिया। व मुतहिरु का मिन अल्लज़ीना कफरू और तुझे पाक करूंगा काफिरों से, यहाँ अल्लज़ीना कफरू से कौन लोग मुराद है, यहूद, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिश की थी, वो काफिर के जिन्होंने आपको मारना चाहा, आपको इनसे पाक कर रहा हूँ। व जाइलुल्लज़ीना तबऊ का और करने वाला हूं उन लोगों का जिन्होंने आपकी पैरवी की, ये कौन है, लिखिए इसके नीचे एरोल का के नसारा, ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स, क्या इनको करने वाला हूं, फौक अल्लज़ीना कफरू ऊपर उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, फिर अल्लज़ीना कफरू किसके लिए आया, यहूद, के मैं नसारा को क्रिश्चियंस को यहूद पर गलबा दूंगा, कब तक, इला यौमिल कियामा कियामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या खबर दी कि नसारा हमेशा यहूद पर गालिब रहेंगे। आज भी देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है वो नसारा है और यहूद मुट्ठी भर है। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये खबर दे दी कि यहूद कभी गालिब नहीं होंगे नसारा पे। हाँ, इस बात की खबरें मिलती हैं कि वक्ती तौर पे यहूद को छोटा सा गलबा दिया जाएगा जो आज हमें दिखता है, लेकिन देखा जाए तो उसकी बैक पे भी क्रिश्चियंस ही हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो वो अगर पीछे हट जाए तो वो छोटी सी बस्ती जो वो एक दिन में गिर सकती है, अगर उसको भी साखियां मिली हुई हैं तो फिर नसारा की हैं। इस आयत में बता दिया गया कि दुनिया में के अंदर तो नसारा गालिब रहेंगे यहूद पर, लेकिन सुम इलैया मरजिउकुम, फिर आना तुम्हें मेरी तरफ है, सबको यहूद नसारा और मुसलमानों को, तफाहकुमु बैनकुम फी मा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तो फिर मैं तुम्हारे दरमियान फैसले करूंगा उस चीज में जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। मुराद यह है कि दुनिया की हद तक तो नसारा को गलबा मिल जाएगा यहूद पर, लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि नसारा का अकीदा ठीक है, इसमें हक क्या है बातिल क्या है ये कल क्यामत के दिन पता चलेगा। और इस आयत से ये भी नहीं मतलब कि दुनिया में नहीं पता, बाज़ लोग इस आयत को सुन के केयरलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं बस जी देखा दुनिया में तो पता ही नहीं चल सकता कौन जिंदा है कौन मरेगा व्हाटसोएवर, हमें क्या पता यहूद ठीक है कि नसारा ठीक है या मुसलमान ठीक है, क्यों नहीं पता? हमें पता है। देखिए कि बास लोग जो होते हैं ना, वो अपनी राय पे डट जाते हैं। अब ये तवफ़ी लफ्ज़ में कितने मानी है? जो लोग एक ही मानी पे डट जाता है ना, तो वो फिर शिद्दत बरतता है। हालांकि आप देखिए कि हर जुबान में कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसको आप मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आप में से कुछ लोगों को इंग्लिश थोड़ी बहुत उससे शनासाई है, तो एक लफ्ज़ होता है मॉनिटर। स्कूलों में आप देखिए जो बहुत अच्छा होता है उसको खड़ा कर देते हैं, कहते हैं ये स्कूल का मॉनिटर है, अगर टीचर को इधर उधर होना पड़ेगा तो ये मदद करेंगे। लेकिन आप इसी मॉनिटर को किसी कंप्यूटर वाले से पूछें तो मॉनिटर कंप्यूटर का एक वो हिस्सा है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अब अगर आप मेडिकल के किसी पर्सन के सामने लफ्ज़ मॉनिटर जाके बोलेंगे तो वो बताएगा कि मरीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी मशीनों में लगा के उसको देखा जा रहा होता है कि इसकी हरकत कैसी है, दिल कैसे धड़क रहा है। एक लफ्ज़ तो उसके तीन मुख्तलिफ मानी कैसे हो गए? लफ्ज़ स्टेबल को देख ले। स्टेबल जब मरीज़ के लिए आता है, कोई डॉक्टर कहता है कि अब मरीज़ की हालत स्टेबल है, तो इसका मतलब ये कि वो ठीक हो गया, हालत अब ठीक है। और अगर आप इसको दूसरे मानों में देखें तो स्टेबल घोड़े के अस्तबल को कहते हैं, यानी जहाँ जाके घोड़ा जम जाता है। अब आप कहें कि जी इसका ये मतलब कि मरीज़ जो है वो घोड़े के अस्तबल में है, तो बात नहीं बनती ना। तो एक असूल अपने लिए ज़िंदगी का बना लीजिए कि जैसे दुनिया की लैंग्वेजेस को समझने के लिए हमें डिक्शनरीज की ज़रूरत होती है ना। आप नॉर्वे में आते हैं, आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखनी है, आप डिक्शनरी ढूंढेंगे उर्दू से नॉर्वेजियन या इंग्लिश से नॉर्वेजियन, और सारी ज़ुबानों में ऐसे ही होता है। जिस तरह इंसानों की ज़ुबानों को समझने के लिए हमें इंसानों की लिखी हुई डिक्शनरीज की ज़रूरत है ना, इसी तरह अल्लाह के अल्फाज यानी कुरान मजीद के अल्फाज को समझने के लिए हमें हदीस की डिक्शनरी चाहिए। कुरान की डिक्शनरी हदीस है। कोई लफ्ज़ तवफ़ी का है ना, इसके बीसियों मीनिंग डिक्शनरी में आ जाए, हम कौन सा लेंगे जो हदीस में आया? लफ्ज़ सलात को देख ले, सिर्फ इस लफ्ज़ सलात का डिक्शनरी मीनिंग लेके कितने लोग बह गए, उन्होंने नमाजों का इनकार कर दिया। क्योंकि जब आप लफ्ज़ सलात को डिक्शनरी में देखते हैं तो प्रेयर है, दुआ करना, तो लोग कहते हैं क्या नमाजें, ये रुकू क्याम सजदा हम तो नहीं मानते, हम तो चलते फिरते प्रेयर कर रहे होते हैं, तो गोया कि हमें तो नमाज की ज़रूरत नहीं। बह गए ना, क्या वजह? कि उन्होंने हदीस की डिक्शनरी इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने इंसानों की डिक्शनरी पे बात की। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के कलाम को आप इंसानों के कलाम पे परखने लगे? तो वो लोग बहुत भटक जाते हैं कुरान पढ़ते और पढ़ाते हुए, और अल्लाह हमें उनमें से ना करे जो सिर्फ डिक्शनरी की मदद से सिखाते हैं। हालांकि आप देखिए कि हम बताते हुए खुद भी आपको डिक्शनरी के लफ्ज़ बताते हैं, इसका ये रूट वर्ड है, इस डिक्शनरी मीनिंग लुगवी, जहाँ भी लफ्ज़ मैं बोलती हूँ ना लुगवी मानी, तो लुगत डिक्शनरी को कहते हैं, इस्तलाही मानी क्या टर्मिनोलॉजीज, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज। आप डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ जो डिक्शनरी का हदीस में बयान करदा मानी से मुख्तलिफ होगा, तो डिक्शनरी का मानी छोड़ के आप हदीस का मानी ले लेंगे। जब हदीस से अलग करके आप कुरान को समझते हैं ना, तो इस किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का मामला हमारे सामने खोल दिया और उनको पाक कर दिया कि देखो अब तुम इन लोगों के बीच में नहीं रहोगे। और जो रब नींद की सूरत में हमारी रूह को लेता है, जो मौत की सूरत में हमारी रूह को लेता है, क्या वो हमारे जिस्म की सूरत में नहीं ले सकता? तो बहरहाल ये बहुत तफसील तरह बात है जिसको मुफस्सरीन ने बहुत ज़्यादा जगह लिया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको बात वाज़े हो गई है। यहाँ देखिए कि इस आयत में हमने देखा कि अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पांच वादे किए थे। अगर इनको दोहरा दूँ तो मज़ीद बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला अल्लाह तआला का वादा क्या था कि आपकी मौत जो है वो यहूद के हाथों कत्ल होने से नहीं होगी, बल्कि अपने वक्त पर होगी। और अल्लाह ताला ये वादा पूरा करेगा, जैसा कि हम बात कर चुके कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे और उसके बाद फिर वो अपनी तबई मौत मरेंगे। दूसरा वादा आपका क्या था कि आपको अपनी तरफ आसमान पे बुला लिया जाएगा, और ये वादा उसी वक्त पूरा कर दिया गया, और इसका तذکرہ आगे इंशाल्लाह सूरत निसा में भी आएगा। तीसरा वादा क्या था कि आपको दुश्मनों की तोहमतों से पाक कर दूंगा। यहूद ने बहुत सारी तोहमतें लगाई थी हज़रत ईसा पर, तो कहा कि वह मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफरू, कि आपको इससे पाक कर दूंगा। और इस वादे को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने पूरा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कि जब इस्लाम में और कुरान पाक में हज़रत ईसा पर लगे हुए इल्ज़ाम को जो है वो धोया गया कि किस तरीके से ईसा अलैहि सलाम बिन बाप के पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला कुरान पाक में उनका तذکرہ इतने अच्छे लफ्ज़ों में और उनके मौजज़ात और उनकी सारी चीज़ों में करते हैं। तो गोया के मुतहिरु का जो वादा था वो ख़ास तौर पर नबी सल्लम के ज़रिए से निभाया गया। चौथा वादा क्या था? व जाइलुल्लज़ीना तबऊ का, कि आपके पैरोकार जो हैं, आपको मानने वाले जो लोग हैं, उनको क़यामत तक ग़ालिब करूँगा। और ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि यहाँ इत्तबा से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का एतकाद और इकरार मुराद है, और वो सारे अहकामात जो हज़रत ईसा के ज़रिए उस कौम को दिए गए थे। और जब लोगों ने इस पे अमल किया तो उनको गलबा मिला। जिस तरह इस्लाम की ये शान है कि जब लोग इस्लाम पे अमल करते हैं तो गलबा मिलता है, और जितना लोग जिस इलाके में इस्लाम से दूर हो जाते हैं उतने मغلوب हो जाते हैं। तो अल्लाह सुबहाना तआला का यही वादा नसारा के साथ भी था कि जब तक नसारा उस दीन के करीब रहे जहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो गलबा ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त भी मुकाबलतन देखा जाए तो यहूद के मुकाबले में नसारा का गलबा जो है वो गालिब है। और इसी के बाद अब पांचवा वादा जो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि सुम्मा इलैय मरजिउकुम फाहकुमु बैनकुम, यानी क़्यामत के रोज़ इन मजहबी इख्तलाफात का फ़ैसला करेगा। तो इन सारी चीज़ों को जब हम सामने रखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों के साथ जैसा भी मामला करना चाहे वो करता है, और फिर जो भी मामला होता है उसको देखा जाता है। यह एक छोटी सी चीज़, शायद आपने उस पर गौर किया कि नहीं किया, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इतनी तफसील के साथ क्यों है? अभी हमने उनकी वफ़ात की बातें देखी, शुरू से हम देख रहे हैं, बल्कि अगर आप पीछे देखें तो तकरीबन 3 रुकू 22 आयतें हैं जिसमें हज़रत ईसा के ख़ानदान का जिक्र, उनकी नानी का, उनकी माँ का, उनकी पैदाइश का तذکرہ, फिर उनकी नज़र का तذکرہ, फिर बच्चे का बोलना, पैदा होना, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया, सूरत मरियम में आता है। इतने तफसीली हालात तो नबी सल्लम के भी नहीं है। कुरान पाक में ना आपकी माँ का तذکرہ براہ راست मिलता है, ना आपकी नानी का, ना फलां का। तो आखिर क्यों? यानी एक सवाल जहन में आता है कि इस्लाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल हालात भी इतनी तफसील से नहीं बताए जितनी तफसील से हज़रत ईसा के बताए, क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सिर्फ चीज़ हमारे इस वक्त फ़ायदे की है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि दुनिया में आना है, और किस दौर में आना है? जब बहुत फितने होंगे। अल्लाह ताला ने खोल के हज़रत ईसा के हालात, उनका नक्शा, और अभी जैसा कि मैंने तذکرہ किया था कि वो क्या पहने हुए होंगे, उनके बाल कैसे होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी, ये सब बता दिया। क्यों? ताकि उस फितनों के दौर में लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानने में कोई मसला ना हो। और दूसरी बात है कि हज़रत ईसा का मुकाबला जो है वो बहुत बड़े फितने यानी दज्जाल से भी होना है। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई भी हुज्जत नहीं छोड़ी कि कोई ये कह दे कि हम उनको पहचान ना सके। फिर इसकी एक और मसलियत ये भी मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात, उनकी बातें इतनी खोल के बयान कर दी कि अगर ज़िंदगी में किसी दौर में कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर दे, जो थोड़े थोड़े अरसे बाद होता है कुछ ना कुछ कहीं से, तो उम्मत को पहचानने में मदद मिले। और अभी जिनका तذکرہ किया उनको भी इसी वजह से उलमाए उम्मत ने रद्द किया था, क्योंकि दलाइल मौजूद थे कि हज़रत ईसा के दौर में ऐसे होगा, वो होगा। तो अल्लाह ताला की शान है कि लोगों को हालात के बिगड़ने से पहले ही नसीहत फरमा देते हैं। अब इन बातों को बयान करने के बाद आयत 56 में फरमाया फअम्मल्लज़ीना कफरू, बस वो लोग जो काफिर हुए, फिर मुराद है यहाँ यहूद, क्या होगा? फअज़िबुहुम अज़ाबन शदीदम फिद्दुनिया वल आखिरा, बस ज़रूर मैं उनको अजाब दूंगा, शदीद अजाब इस दुनिया में और आखिरत में। और वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। उसी बात की तकरार है जिसका तذکرہ पीछे हुआ था कि जिन लोगों ने, यानी बनी इसराइलियों के वो लोग जिन्होंने हज़रत ईसा की जान लेने की कोशिश की थी, अल्लाह ताला इन लोगों को पहली तो बात है कि काफिर कहते हैं, और दूसरी बात है कि इनको दुनिया में ही अजाब देगा। और ये अजाब आ चुके, पीछे भी आए, आज भी आएंगे, आज नहीं भी अगर दिखेंगे लेकिन क़्यामत तक ये मामला जो हैं वो आते ही रहेंगे। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके कि किस तरह बुख्त नसर का हमला इन पर हुआ, टीटस का हमला हुआ। फिर अगर आज के दौर में हम देखें तो पिछली सदी में हिटलर के हाथों जो इनका मामला हुआ होलोकॉस्ट के मानों में, फिर इसी तरह جرمن نے ان پر حملہ کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو جب قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پکڑتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کو پکڑا جاتا ہے یا اجتماعی طور پہ کوئی قوم کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے تو عموماً یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست نظریہ رکھنے والے۔ اب یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نصارہ بھی ہو سکتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل بیلنس رویہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا دے گا ان کے اجر ان کو۔ دیکھیے پیچھے بات تھی نا یہود کے مقابلے میں نصارہ کے غلبے کی، تو بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا عیسیٰ کے فالوورز کو، لیکن یہاں جب آخرت کے اجروں کی بات ہوئی تو ایک ہی معیار ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بہت بڑی دلیل بن گئی اس بات کی کہ دنیا میں چاہے نصارہ کو غلبہ مل جائے یہود پر، لیکن قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے اور پورے اجر دے گا۔ یا ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھیے گا، لفظ فیوفیہم، یہ کون سا لفظ ہے؟ روٹ اس کا وہی ہے وفایا جو ابھی ہم نے متوفی کا میں دیکھا۔ اب وہ لوگ جو متوفی کا معنی فوت کرنا کہتے ہیں، کچھ لوگ سٹبن ہیں اس بات پہ، ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کا معنی ایک ہی ہے کہ میں ضرور تمہیں فوت کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فوت ہوں گے تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ وہی لفظ ہے نا اس کا، تو پھر یہ ترجمہ کیجئے کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اللہ فوت کر دے گا ان کے اجروں کو، بات نہیں بنتی نا۔ اور سیدھی سی بات تھی، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا کہہ دے کہ عیسیٰ آپ فوت ہو جائیں گے، بات ختم۔ اتنا گھمانے پھرانے کی، اتنی ادھر سے ادھر بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ حقیقت یہ تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو لہٰذا لفظ وفی اس میں اس بات کو مزید واضح کرتا ہے، اور اجورہم اجر کی جمع ہے، ان کے اجر یعنی جو محنت انسان دنیا میں کرتا ہے پھر اس کے بدلے میں جو کمائی ہوگی۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ یہاں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ عام معنوں میں دیکھا جائے تو ہر ظالم کو پسند نہیں کرتا، اور خاص ٹیکس کے ساتھ دیکھیں تو ظالم یہاں کون ہے؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی۔ اور یہاں ساری کہانی سنا کے اللہ تعالیٰ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ذالک نتلوہ علیک، یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر۔ علیکا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ساری باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ عیسیٰ کی باتیں، ان کو اٹھائے جانے کی باتیں، یہ من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیتیں بھی ہیں اور حکمت والا ذکر بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت عظمیٰ کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس بات پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ باتیں بنا دی ہیں، ہم آپ کو وحی کی روشنی میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو حق مسئلہ بتا رہے ہیں، تو میں تو اپنے دل میں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہی ہوں کہ قرآن پاک کھلا تو ہمیں بھی صحیح مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جو مسلمان قرآن پاک سے دور زندگی گزارتے ہیں وہ آج بھی اسی اضطراب کا شکار ہیں کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کیسے ہے، ویسے ہے۔ ایک اور چیز ان آیات سے 56 سے 58 میں جو بات ہوئی اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ کفار پر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ ان کے لیے کفارہ نہیں بنے گی۔ عموماً کیا ہے کہ مومن پر جو دنیا میں مصیبت آتی ہے نا، کل قیامت کے دن گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن چکی ہوگی۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، دنیا میں بھی شدید عذاب دوں گا، دشمنوں سے مار پٹوائی کرواؤں گا، ان کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، اور وَالْآخِرَةِ، پھر آخرت میں بھی ہوگا کہ ان کو دنیا کے یہ مشکلات وہاں کی مصیبت سے نہیں بچائیں گے، وہاں زیادہ شدید عذاب دوں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں تو پھر دنیا میں سزا کیوں ہوئی؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ بالکل ایسی جیسے ایک حاکم ہے کسی مجرم کو کہے اور اسے کہے کہ فی الحال تمہیں میں ایک سال کی سزا دیتا ہوں، قید میں جاؤ، اور اگر تم نے وہاں جا کے جیل میں کوئی اور شرارت کی تو اس پہ 2 سال کی سزا اور بڑھ جائے گی، یعنی اس کو پہلے سے بتا دیا جائے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ 2 سال آج کی تاریخ سے ہوں گے، जो आज तुमने हुई, तो बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो दुनिया में सजाओं के बावजूद भी नहीं नसीहत लेते, तो फिर अल्लाह ताला उनकी सजा को आखिरत में मजीद बढ़ा देगा, चाहे तो दुनिया में भी बढ़ा दे और कम कर दे।